ओम शांति। मोह माया को त्याग रे प्राणी, जीवन है बस बहता पानी। जल पे काहे चित्र बनाए, ये छाया तो है आनी जानी। रूप की धूप तो ढल जाएगी, मोम ये सारी पिघल जाएगी। सुख दुख है सब बेमानी, मोह माया को त्याग रे प्राणी, जीवन है बस बहता पानी। अहंकार का आंचल छोड़ो, झूठे बंधन सारे तोड़ो। कहते आए सदा ही ज्ञानी, मोह माया को त्याग रे प्राणी, जीवन है बस बहता पानी।
मोह माया को त्याग रे प्राणी, मोह माया को त्याग रे प्राणी, जीवन है बस बहता पानी।
ये संसार, ये जीवन नश्वर है, सभी को पता है। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि उसका आकर्षण बहुत ज्यादा है। एक तरफ तो वैराग दिलाने के लिए ये बात कही जाती है कि जो क्षणभंगुर है उससे वैराग लाओ, और जो शाश्वत है उसकी तरफ आकर्षित हो जाओ। परंतु क्या कारण है कि जो क्षणभंगुर है वही अधिक आकर्षित करता है? ये वैसे ही है जैसे कोई पत्थर आकर्षित नहीं करता क्योंकि शाश्वत है, पर एक फूल जो सुबह सुबह खिलता है शाम को कुंभला जाता है वो ज्यादा आकर्षित करता है। शायद ऐसा ही कुछ जीवन के साथ भी है कि क्षणिक है और शायद यह क्षणभंगुरता ही इसके आकर्षण का भी कारण है। ये बड़ी विरोधास्पद बात है, क्योंकि हमेशा ये बताया जाता है कि जो जो नश्वर है उनसे वितराग हो और जो शाश्वत है उसकी तरफ आकर्षित हो। आज सुबह की साकार वाणी में पवित्रता की चर्चा करते हुए बाबा ने एक बात कही थी, टेम्पटेशन क्या? टेम्पटेशन क्या? बहुत है। क्या कहा था? टेम्पटेशन बहुत है। एक जन्म के लिए पवित्र बनो, कितना भी समझाते हैं फिर भी क्या होते? बाप से कहते हैं, बाबा हमने मुंह काला किया, माया से हार खाई, गिर पड़े, क्षमा करो। बाप कहते हैं, माया से हार खाई, गिर पड़े, अब माफी काहे की, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार गिर गए तो मुरली में था, टेम्पटेशन बहुत है। टेम्पटेशन अर्थात प्रलोभन, टेम्पटेशन अर्थात डिजायर्स, टेम्पटेशन अर्थात सडन, अकस्मात होने वाला एक क्षणिक आकर्षण जिसके दूरगामी परिणाम घातक होते हैं। शॉर्ट टर्म डिजायर जो कि लॉन्ग टर्म गोल को प्रभावित करते हैं। एक विवशता की अवस्था है प्रलोभन, व्यक्ति टेम्प्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है और सारी नीति, सारा ज्ञान, सारा अध्यात्म, सारी मर्यादाएं उस समय भूलता नहीं है परंतु दरकिनार कर देता है, एक तरफ कर देता है। ऐसी जबरदस्त आसक्ति, एक आकर्षण है टेम्पटेशन में कि व्यक्ति को खींच लेता है। एक इंद्रिय केवल, गीता में है, यदि सारी इंद्रियों को वश में कर लिया और एक इंद्रिय को खुला छोड़ दिया तो जैसे कोई नाव किसी तूफान में दूर भाग कर ले जाता है, वो तूफान छिन्न भिन्न कर देता है उस तूफान को, उसी तरह सारी इंद्रियां वश में है पर एक को खुला छोड़ रखा है तो वो एक ही तुम्हारे घात का कारण बनेगी। इसके लिए टेम्पटेशंस बहुत है इस मार्ग में। आज कहा ये बहुत लंबी क्या है, सुबह की मुरली, ये बहुत लंबी मुसाफिरी है। ये क्या है? बहुत लंबी मुसाफिरी है, लंबी यात्रा है। तो ज्ञान योग के इस मार्ग में, तपस्या के इस मार्ग में एक तीव्र पुरुषार्थी को भी बहुत सारे प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। कदम कदम पर टेम्पटेशन से, और जब व्यक्ति टेम्प्ट हो जाता है, प्रलोभन के वश हो जाता है और वो कर बैठता है जो उसे करना नहीं चाहिए, उसके बाद जो पश्चाताप और आत्मग्लानी का भाव आता है वो बहुत ज्यादा होता है, उसका पीछा नहीं छोड़ता है। परंतु कुछ समय के बाद फिर से वही प्रलोभन आता है, फिर से उसी के वश होता है, फिर से अपने मन को समझाता है और ये क्रम जारी रहता है। क्योंकि जब वो समझा रहा है तब वो होश में है और जब वो टेम्पटेशन आता है वो एक क्षणिक रूहानी बेहोशी की अवस्था होती है, उसे समझ ही नहीं आता है ये क्या कर दिया। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, टेम्पटेशंस, क्या क्या टेम्पटेशंस इस ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण जीवन में एक तीव्र पुरुषार्थी को आकर्षित करते हैं, उसकी स्थिति को डावाडोल कर देते हैं। स्थिति का वायुमंडल खराब हो जाता है, किसका वायुमंडल? स्थिति का वायुमंडल। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जो भी तुम्हारे संपर्क में आए अपने स्थिति के वायुमंडल से और वृत्ति के वाइब्रेशन से उसे कुछ ना कुछ सहयोग दो। तो जब स्थिति का वायुमंडल ही खराब है तो उसे कौन सा सहयोग दिया जाएगा? नहीं दिया जा सकता। सबसे बड़ा वायुमंडल बाहर का नहीं है, मन के स्थिति का वायुमंडल क्या है, उसमें स्थिति कितनी अचलडोल है, निराधार है। तो इस ब्राह्मण जीवन में बहुत सारे टेम्पटेशंस आते हैं, ऐसे हम 12 प्रकार के टेम्पटेशंस देखेंगे। सबसे पहला शरीर, सबसे पहला देह। देह ही खींचता है, पागल कर देता है। आज की मुरली में अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया क्या करती है, माया जबरदस्त है, माया मुंह फेर देती है एक तरफ, माया क्या करती है, हप कर लेती है। जैसे गज को ग्राह ने हप कर लिया था। इसे एक जन्म अंतिम जन्म पवित्र रहो, पर फिर भी रहते नहीं है। शरीर इतना पागल कर देता है, खींचता है। सबसे ज्यादा टेम्पटेशन तो देह का ही है। जितना अपनी ही देह के टेम्पटेशन से परे है वो उतना दूसरों की देह से भी परे हो जाता है। जो खुद ही की देह में ज्यादा फंसा है उसको न चाहते हुए भी दूसरे की देह खींचती है। तो सबसे पहला तो हमारा आनंद शरीर के तल पर हो ही ना, हमारा आनंद संकल्पों के तल पर, विचारों के तल पर। शरीर के जितने सुख हैं सब के सब अंततः दुखी देते हैं। शरीर का सुख, थोड़ा सा सुख के बाद तुरंत वो फ्रस्ट्रेशन, कुंठा में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए जब जब ये टेम्पटेशन आए अपने आप को संभालना है, क्योंकि दैहिक टेम्पटेशन बहुत बड़े विकर्म का कारण बन जाते हैं। सबसे पहले इसको जीतने के लिए संयम की साधना करनी है, आत्म संयम की। जो एक इंद्रियों को संयम में नहीं रख सकता, बाकी सारी इंद्रिय विद्रोह असंयमित हो जाती है। एक को वश में करो, धीरे धीरे सारी वश में आती है। रोज रोज एक एक इंद्रियों को वश में करते जाना है। नहीं अगर किया तो धीरे धीरे आत्मा सभी इंद्रियों के वश हो जाती है और गुलामी का जीवन जीती है। आध्यात्मिक गुलामी, स्पिरिचुअल स्लेवरी। और यह सबसे बड़ी स्लेवरी है जिसमें हम अपने मालिक नहीं है, इंद्रियों के अधीन है। इंद्रिया उत्तेजित होती है और इंद्रिय उत्तेजित जब होती है तो मन विचलित होता है, और मन जब अस्थिर होता है तो एकाग्रता भंग हो जाती है। फिर ज्ञान कहां से धारण करेंगे? कुछ भी नहीं होता। देह के क्या क्या टेम्पटेशन है इस पर चिंतन करना है रोज। देह के आकर्षण, देह के पदार्थ, देह की वस्तु, देह के साधन, देह के संबंध, सब खींचते रहते हैं। तो बॉडी का टेम्पटेशन सब पता है, बॉडी है क्या। गीत में सुना, मोम है, पिघल जाएगा। शरीर क्या है? मोम, पिघल जाएगा। अब उसका रूप है, आकार है, पर वो पिघल जाएगा एक दिन, कुछ भी नहीं रहेगा। निरंतर शरीर की नश्वरता का चिंतन करते रहना, शरीर है क्या। अभी अभी यूके में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई और उस स्टडी में पाया गया कि लोगों की भूलने की आदत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोगों की भूलने की आदत। पूरा उन्होंने फिगर दिया है कितने कितनी बातें भूलते हैं और कौन कौन सी बातें भूलते हैं। कहा कि 30 मिलियन ब्रिटेन में रहने वाले ये भूल जाते हैं कि पर्स कहां रखी, बैग कहां रखी, चाबी कहां रखी। 10 मिलियन ये भूल जाते हैं उसका अंदर का। 10 मिलियन ये भूल जाते हैंडबैग, पर्स, ब्रीफ केसेस, मोबाइल फोन, म्यूजिक प्लेयर। जो लोग भूल जाते हैं उनकी संख्या है 7.1 मिलियन। जो चाबी घूमते हैं जिनकी, 12.5 मिलियन लोग, उनको चाबी कहां रखी पता नहीं। भूलने की ये सारा स्टडी है, लंदन में किया हुआ, हैलिफैक्स जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज लिमिटेड ने की ये स्टडी। और उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है हॉवर्ड पोर्सनर, उसने अंततः इसका निष्कर्ष निकाला इस स्टडी का कि ये सारी जो स्टडी की गई, लोग भूल क्यों रहे इतना। और कारण बताया, इंडल्जेंस इन सेंशुअल प्लेजर, भोग वासना में जो जितना ज्यादा डूबा है उसकी दिनचर्या में वो दिन भर कई चीजें भूलता है। पर्स कहाँ रखी, मोबाइल कहाँ रखी, कहाँ रखा, क्योंकि एकाग्रता नहीं है। और उन्होंने उस स्टडी में कहा, ये इस बीमारी से अगर हमें यूके को बचाना है तो लिखा, द ओनली रेमेडी टू ओवरकम फॉरगेटफुलनेस इज प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट, आत्म संयम का अभ्यास, विच इज वन ऑफ द फंडामेंटल पिलर्स ऑफ इंडियन कल्चर। स्टडीज हर जगह की, बस, टैक्सी, ऑफिस, घर, भूलने के ऊपर ये स्टडी है। और निष्कर्ष है कि हाफ, पूरे यूके के हाफ, आधी जनता भूलती है। क्यों? भोग विलास में डूबी हुई है, बुद्धि एकाग्र नहीं है, चंचल है, चंचलता बहुत है। जितना भोग विलास से आत्मा ऊपर है उतनी वो एकाग्र है, जितनी दैहिक सुखों से ऊपर है एकाग्र है, और जितना वो नीचे है ऐसा लगता है इसका और उसका क्या संबंध। मुरली पढ़ने का और मुरली याद रखने का और चिंतन करने का इससे क्या संबंध, यह अपनी जगह पर, यह अपनी जगह पर, ऐसा नहीं है। उसमें डूबो तो ये प्रभावित होता है मन, बेचैनी आ जाती है अजीब सी, जिसका कोई नाम नहीं है, न मालूम बेचैनी। तो इस ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा टेम्पटेशन कौन सा है? शरीर, यही बहुत बड़ा टेम्पटेशन है। उसके बाद में दूसरा टेम्पटेशन, भोजन, ईटिंग, ईटिंग बहुत बड़ा टेम्पटेशन है, फूड। जो बाबा ने कहा है, तुम बच्चों का भोजन एक रस होना चाहिए, जहां सुख का आधार भोजन हो जाए वहां तपस्या धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। और भोजन में अत्यधिक रस उन्हीं आत्माओं को रहता है जिनको ज्ञान और योग में वो रस नहीं मिल रहा है, इसलिए वहां ढूंढती है उस रस को कि आज ये, आजकल वो, आज ऐसा कल वैसा, आज ये कल नया, क्योंकि अंदर से रिक्तता है, खालीपन है। मुरलियों में आता है जब तुम बहुत खुश हो, भूख लगती है क्या? नहीं, भूख लगने का संबंध पेट से बिल्कुल भी नहीं है, मस्तिष्क से है। अतृप्ति आत्मा का स्वभाव बन गया है। इसके लिए उसको कितना भी दो, उसको लौकिक भौतिक दैहिक, वो तृप्त नहीं होती है, क्योंकि उसकी तृप्ति इन सब चीजों में है ही नहीं। उसकी तृप्ति किसी और बात में है। द्वापर से आज तक कभी कोई व्यक्ति नहीं है जिसका पेट भरा है भोजन से। तो हमारे सुख का आधार भोजन नहीं है। हाँ, उसका महत्व बहुत है। हाँ, वो एक एक कण मोहर के जैसा है, दुख भंजक भोजन है। दुआ और दवा उसमें समाई हुई है। याद में बनाओ, याद में खाओ तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। परंतु क्या खा रहे, पहला प्रश्न, कितना खा रहे, दूसरा प्रश्न, कब खा रहे, तीसरा प्रश्न, कब, कहां, कितना, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस लिए? लक्ष्य स्वाद है या जीवन को चलाना, शरीर को चलाना? दूसरा टेम्पटेशन है भोजन। इसको भी नियंत्रित करना है। जब तक ये एक रस नहीं होगा, तब तक स्थिति भी हिलती रहेगी। और योगी का भोजन बहुत कम होता है, क्योंकि योगी भोजन से नहीं, संकल्पों की शक्ति से चलते हैं। तीसरा टेम्पटेशन नाम और शान का टेम्पटेशन। नाम, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, प्रशंसा, स्तुति। पर शायद आत्मा तब ये भूल जाती है कि आज स्तुति हो रही है तो कल निंदा भी होगी। इसलिए खुशी में ही आनंद का अनुभव करती है, स्तुति में। पर हमारे सुख का आधार इस संसार के लोगों की हुई स्तुति नहीं है। इस टेम्पटेशन से भी अपने आप को ऊपर उठाना है कि यह भी एक प्रलोभन है, क्षणिक आकर्षण है जो खींचता है आत्मा को। और असंख्य आत्माएं इसको पाने के लिए बहुत कुछ करती है। फिर जीवन में जो कुछ किया जा रहा है वो अंदर से नहीं आ रहा है, वो एक दिखावे के लिए आ रहा है कि दूसरों को पता चले ये सेवा हमने की, ये उनको पता चले। ज्ञान योग ऐसा हमने किया, ये उनको पता चले। अंदर से अतृप्त है आत्मा। अगला टेम्पटेशन है भटकना, साइट सीइंग, ये देखूं, वो देखूं, यहां जाऊं, वहां जाऊं। फिर से कारण वही है, अंदर से खालीपन है, इसलिए बाहर की प्लानिंग्स चल रही है। अंदर अतृप्त है, एंग्जाइटी है, अंदर लोनलीनेस है, अकेलापन है। कैसे भरेगी आत्मा? सोचती है वहां जाऊं, वो देखूं तो भरेंगे। पर वहां जाने के बाद फिर से वही अतृप्ति, क्योंकि तृप्ति होती ही नहीं है। जैसे वो दिखाया, एक नाई है, एक जंगल से गुजर रहा है, अचानक से आवाज आती है, क्या तुम्हें 7 सोने के भरे हुए घड़े चाहिए, सिक्कों से भरे हुए? वो देखता है कौन है, वो कहता है हाँ चाहिए। तो कहते जाओ तेरे घर पहुंचा दिए। इतना खुशी होता है, इतनी खुशी होती है, उसको लगता है झूठ है, कोई दिखा तो नहीं। घर पे जाता है तो देखता है वास्तव में 7 घड़े हैं जो सोने के सिक्कों से भरे हैं। पहला घड़ा फिर चेक करता है, क्योंकि चेक भी तो करना है, पता नहीं किसने ऐसे ही बोल दिया होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 7वां देखता है, दुखी होता है क्योंकि आधा भरा हुआ है। वो सोचता है ये आधा है, अब बस एक ही जीवन का लक्ष्य है, इसको पूरा करना है। तो फिर धीरे धीरे घर के बहुत सारे जेवर वगैरह बेचता है और उसमें डालता है, पर वो घड़ा ऐसा अद्भुत है कि कितना भी डालो वो आधा ही रहता है। फिर राजा के पास जाता है, राजा का वो फेवरेट है। राजा को कहता है मेरी तनख्वाह बहुत कम है, थोड़ी बढ़ाओ। राजा कहता है ठीक है, तुम तो इतने अच्छे हो, डबल तुम्हारी तनख्वाह। तनख्वाह दबा हो जाती है, घर का सारा सामान बेच देता है, जितना सब उसमें डालता है सिक्के बना बना के, पर वो भरता ही नहीं। फिर भीख मांगने पे आ जाता है पैसे बचाने के चक्कर में। और राजा एक दिन उसकी ऐसी हालत देख के पूछता है जब तुम्हारी सैलरी आधी थी तब तुम कितने खुश रहते थे, अब क्या हुआ तुम तो इतना सब होने के बाद। राजा कहता है कहीं तुम्हें वो 7 घड़े तो नहीं मिल गए। वो कहता है क्या, आपको कैसे पता। राजा कहता है ये वो यक्ष के घड़े हैं, और जो जिसको ये घड़े मिलते हैं ना वही तुम्हारे जैसा दिखाई देता है, दुखी, परेशान। और फिर वो कहता है आपको कैसे पता। वो कहता है मेरे पास भी आया था एक बार कि तुम्हें 7 घड़े चाहिए क्या, और जैसे मैंने कहा क्या वो घड़े मैं जन सेवा के लिए प्रयोग कर सकूंगा या केवल उसी में पड़े रहेंगे। और जैसे ये प्रश्न पूछा वो यक्ष भाग गया। तो तुम भी नकार दो। तो वो जाता है और कहता है ये घड़े मुझे नहीं चाहिए, घड़े गायब हो जाते, और घड़ों के साथ जितनी उसकी प्रॉपर्टी थी वो सब गई ना 7वें में, वो भी चली गई। तो जैसे वो घड़ा कभी नहीं भरता है, कितना भी डालो उसमें, वैसे इस आत्मा का घड़ा भी संसार की किसी भी वस्तु से कभी नहीं भरता, कितना भी डालो उसमें, संसार के कितने भी संबंध अच्छे हैं सब डालो उसमें वो नहीं भरता है। व्यक्तियों का प्यार डालो उसमें नहीं भरता है, भोग विलास सब डालो उसमें नहीं भरता है, कुछ भी डालो, शरीर के सारे सुख सुविधाएं उसमें डालो बिल्कुल नहीं भरता, खाली ही रहता है हमेशा। और पूरा जीवन चला जाता है पर फिर भी अतृप्ति जाती नहीं है। तो भटकना, ये देखो वो देखो, यहां जाऊं वहां जाऊं, पैसे है तो कहां जाऊं, मुरली में आता है कहां जाओ, लड़काना लड़काना कराची के उधर। तो हम इस स्थान से या जहां पर भी रहते हमारे कदम यदि इस स्थान से बाहर जाते वो केवल सेवा अर्थ हो, जहां हमारे कदम पड़े वहां सेवा हो। बाबा ने कहा अखंड महाधानी बनो, ऐसा हो ही ना कि तुम कहीं जाओ और किसी को कुछ ना दो, जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा कुछ ना कुछ को उसको दो। अखंड महादानी बनो, मनसा दो, वाचा दो, कर्मना दो, या संबंध संपर्क द्वारा किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दो। खूब ये गुण प्रभु प्रसाद है, अव्यक्त महावाक्य बाबा की, ये गुण प्रभु प्रसाद है, खूब बांटो, देना है। गए और कुछ भी नहीं दिया और खुद ही भोग कर आ गए, बोझ है, बोझ है। मधुबन में आए और रह भी रहे, एक एक रोटी जो तोड़ी है उसका हिसाब देना पड़ेगा। आज कहा है ट्रिब्यूनल बैठेगी, जो ट्रेटर होंगे पक्के ट्रेटर भी है यहां पर, जो देते और फिर ले लेते हैं। सेंटर पर दिया टेप रिकॉर्डर, बहन जी से झगड़ा हो गया, बहन जी वो जरा टेप रिकॉर्डर चाहिए था एक दिन के लिए, लेके गए और वापस लाया ही नहीं। ये तो स्थूल की बात थी, भगवान तो सूक्ष्म में विकारों की बात कर, एक बार दे दिए वो वापस लिए, अर्थात ट्रेटर। एक बार प्रतिज्ञा की, अच्छे अच्छे बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं। कुछ दिन पहले मुरलियों में था, महारथी भी अंदर से गल रहे हैं, आग लगी है अंदर से, लूनपोनी होते हैं। माया बहुत जबरदस्त है, कमजोर उसको बिल्कुल नहीं समझना, अच्छे अच्छे को पछाड़ देती है। टीचर जो हमको पढ़ाती थी, कहती थी पवित्र बनो, आज है ही नहीं, चीची बन गई, दुनिया में चली गई। खबरदार रहो, आज की मुरली में तुम युद्ध के मैदान में हो, यू आर एट वॉर विथ माया, तुम युद्ध के मैदान में हो, खबरदार रहना है। यहां फूक फूक के कदम रखने एक एक। उसके बाद में अगला टेम्पटेशन है बोलना, स्पीच का टेम्पटेशन। मौन कहां लुप्त हो गया है पता नहीं, सबसे ज्यादा ऊर्जा मौन में है, बोलना टेम्पटेशन है। और हम बोले भी तो हमारे मुख से ज्ञान युक्त, रोज राज युक्त, समान युक्त बातें निकले, वरदानी बातें निकले, ना कि अभिशाप। एक अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है, जब तुम एक होपलेस केस की भी सेवा करोगे, उच्च पद पाओगे। किसकी सेवा करोगे? जो होपलेस है। उसी मुरली में कहा एक जगह, जब तुम उसकी सेवा करोगे जो अपकारी है, जो तुमसे घृणा करता है, तुम्हारी प्रलब्ध ऊंच होगी, उसको भी कुछ ना कुछ दे दो। उसके बाद में अगला टेम्पटेशन है डिजिटल टेम्पटेशन। डिजिटल ये सबसे बड़ा टेम्पटेशन है वरदान वर्तमान में। एक चित्र किसी ने भेजा था, ये मोबाइल है, इसके पीछे जेल है, इधर से प्रवेश करते अंदर जेल में जाके बैठते और वहां बैठ के चला रहे अपना अपना, यहां जेल है। कैसे YouTube एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, WhatsApp एडिक्शन, ये तीन है। और इनके ऊपर बहुत सारा अभी रिसर्च चल रहा है, जो साइकियाट्रिक में मेंटल डिसऑर्डर्स है उसमें भी इसको इंक्लूड करने की बातें चल रही है। इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर इसका नाम रखा है। और ये रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, लक्षण क्या क्या होते हैं मरीज में, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या किया जाए, डायग्नोसिस कैसे किया जाए, और फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है, इस सब का पूरा लिटरेचर अवेलेबल है। और ट्रीटमेंट में सबसे पहली बात तो एक ही चीज कही है सारे लिटरेचर में, पहले ये स्वीकार कर ले कि ये मैं एडिक्ट हो चुका हूं, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन रह नहीं सकते, ऑनलाइन ही रहना है, ये तो बेचैनी चालू हो जाती अंदर जब तक 10 बार चेक नहीं करते उसको, क्या चेक कर रहे हैं वो नहीं पता, पर चेक करना है बस। किसी ने कुछ भेजा हो तो एक भी छूटना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा टेम्पटेशन है, इसका प्रयोग करना है। हाँ, पर उन्होंने स्टडी में ये भी कहा है कि जो लोगों ने इसका प्रयोग बिल्कुल ही बंद कर दिया, वो इसका अर्थ ये नहीं हुआ है कि वो छूट गए इस बीमारी से, ये भी गलत है, क्योंकि उसके भी कुछ घातक परिणाम, क्योंकि इसकी आवश्यकता भी बहुत है। इसलिए इसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट बताई है अलग अलग प्रकार से, कैसे इससे छूटा जाए। प्रयोग करना है परंतु टाइमिंग सेट करके रखना है, जितना हो सके बीच बीच में ऑफलाइन, अलग अलग, जैसे वो बीमारियों की ट्रीटमेंट होती है इसकी भी ट्रीटमेंट है। क्या देखा जा रहा है, विदाउट पर्पस ऑनलाइन जाना ही नहीं है, ऐसा कहा हुआ है। गूगल का एक बहुत बड़ा अफसर है, उसने अपने एक लेख में लिखा है, डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट अ पर्पस। कोई लक्ष्य है, ढूंढना है, मुरली में कोई अच्छी बात आई है जिसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये, उसमें जाओ ढूंढो और वापस आ जाओ। उसमें लगे नहीं रहना है कि चलो अभी ये ढूंढा तो आगे का भी ढूंढ लेता हूँ, अच्छा वो भी ढूंढ लेता हूँ, चालू यहाँ से किया, बंद कहाँ से किया पता ही नहीं, इधर से घुसे थे अब कहाँ से निकल रहे हैं, और निकलते निकलते रात के 12 बज गए। और जिसके लिए ढूंढने का चालू किया था वो तो बहुत अच्छा था, निकल कहीं और से रहे। तो डिजिटल टेम्पटेशंस भी बहुत बड़े टेम्पटेशन है। उसके बाद में अगला टेम्पटेशन है स्लीप टेम्पटेशन, नींद। इसके अलग अलग टाइमिंग है, सबसे पहला टाइम है अमृत वेला, अमृत वेला पहला। अभी 3:30 बजा है तो अभी तो टाइम है, अभी 15 मिनट थोड़ा सा कर लेते हैं कुछ नींद का। कोई 3:45 बजे उठता है उसको लगता है वो थोड़ा 5 मिनट, और वो 5 मिनट सीधा 5 या 6 या कभी 7 भी बजा देता है। और फिर कहते हैं कि जिस दिन लेट उठे उस दिन बाबा की बहुत ज्यादा याद थी दिन भर, और उस दिन योग भी अच्छा लगा क्योंकि ध्यान था कि सुबह अमृत वेला मिस हुआ मिस हुआ मिस हुआ। तो इसलिए कभी कभी ये भी सोचते हैं कि क्यों ना रोज ही ऐसा हो तो सारे दिन भर ज्यादा बाबा की याद रहे, क्योंकि रोज जिस दिन अमृत वेला होता है उस दिन तो रिलैक्स रहते हैं, सुबह का सब ठीक हो गया, मुरली ठीक हो गई, सब ठीक ठाक चला। तो ये उल्टा भी परिणाम है इसका, उल्टा नशा श्रीमद की उल्टी गंगा, पर उनके अनुभव होते हैं ना कि ज्यादा ध्यान है अब। रोज बैठ के 1 घंटा बैठते थे, आज 2 घंटा बैठे, क्योंकि हमेशा एक दिल खा रहा है अंदर से कि थोड़ा लेट हो गया सुबह। पर ये भी माया है। एक जैसे एक बहन कहती थी 4 बज गए मैं सो रही हूं और स्वप्न में बाबा दिखाई दे रहा है, तो मुझे उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? क्यों उठूं? क्योंकि बाबा साथ में है एकदम, मतलब मैं सो रही हूं और थोड़ा सा देख भी रही हूं, ऐसे 4 बज रहे जैसा दिख रहा है, पर इधर बाबा स्वप्न में है, तो उठूं कि नहीं उठूं? अगर उठती हूं तो मैं बाबा से दूर हो रही हूं। कितना बड़ा प्रश्न है, वो माया है। वही माया है, ईश्वरी माया का अतिशय रॉयल रूप। तो स्लीप टेम्पटेशन, अमृत वेला, एक बार आंख खुल गई बस वो बिस्तर को चुड़ैल को उठा के फेंक देना है। क्योंकि एक बार उठे और बाद में तुरंत सोना बहुत बड़ी रिस्क है, बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आगे कब उठेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि अलार्म ने एक बार तो उठा दिया है, आगे अलार्म कुछ सेट किया हुआ नहीं है। तो कुछ दिन पहले स्लोगन था, परमात्मा प्रेम वो अलार्म है जो तुम्हें अमृत वेला उठाता है। इसके लिए सो कैसे रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना योग युक्त तो हो कि आत्मा नींद के आघोष में जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला नींद की समस्या अमृत वेला, दूसरा पोस्ट अमृत वेला, अमृत वेला हो गया चलो नींद करने, ये समय है चिंतन का, मुरली मनन का, पठन का, पाठन का, व्यायाम का, प्राणायाम का, वॉकिंग का, ये सब चीजों के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, सो गए जाके सीधा, फिर 6 बजे उठे या 6:30 बजे उठे, मुरली के बाद तो नहीं और फिर मुरली जा रहे सब कुछ करके, इधर जो ऊर्जा इकट्ठी की थी सुबह सुबह नींद में चले गए और गई सब। इसके लिए नींद अमृत वेले के बाद तो श्रेष्ठ पुरुषार्थियों ने बिल्कुल भी बिस्तर का संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए, विष की तरह। एक बार उठ गए बस उठ गए अब। तो दूसरा, तीसरा नींद मुरली, आंखें खोल कर सोते हैं। आंखें खुली है पर सोए है, आंखें खोल कर लिखते लिखते नींद करते हैं। मधुबन के एक भाई ने दिखाया था एक बार उसकी डायरी एक दिन कि आज इतनी नींद आ रही थी मुरली में, ये लिखा गोल 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 पूरा गोल गोल, क्या लिखा उसको भी नहीं पता पर पूरी आंखें खुली थी, बैठे भी थे और लिख भी रहे थे ऊपर देख देख के, पर भयंकर नींद, किसी कारण से शायद रात भर जागना पड़ा था। अच्छे पुरुषार्थी है बट ऐसा हुआ था। तो ये दिखा है, ये है परिणाम, पूरा लिखा पर गोल 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 है पूरा, एक भी शब्द दिखाई नहीं देता है। तो आंखें खोलकर बैठते भी है, देखते भी है, लिखते भी है, परंतु अंदर नींद का नशा चालू है, अर्थात नींद की मैनेजमेंट, नींद का मैनेजमेंट अभी तक हुआ नहीं है। ब्राह्मण जीवन में दो ही चीजें सेट करनी है, भोजन और नींद। ये जो सेट हो गई, जीवन सफल, योग सफल, दास तक ये दो ही सेट नहीं हो पा रही है तो दोनों डिस्टर्ब रहता है ज्ञान योग। हाँ, जल्दी उठना, जल्दी सोना, ये ज़्यादा कारगर उपाय है। और उससे भी ज़्यादा है स्थिति कैसी है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 11 बजे सोए हैं पर स्थिति बहुत पावरफुल है, तो अपने आप उतने ही बड़े बजे उठेंगे जितने बजे रोज उठते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होगा रूटीन। और यह हमने कई बार देखा है, कई बार पेशेंट्स आ जाते हैं, कुछ हो जाता है, पूरी पूरी रात चली जाती है उसमें, परंतु अमृत वेला वैसे के वैसे ही रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो उससे भी ज़्यादा जल्दी सोना ये बहुत अच्छा है, पर स्थिति किस स्थिति में सोया जा रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला टेम्पटेशन है रिलेशनशिप्स, दोस्ती बनाना किससे, लोगों को इंटरेस्ट किस में, दोस्त बनाने में, मेंटेन करने में किसी को इनको इंटरेस्ट नहीं है, नए दोस्त चाहिए। दोस्ती, कोई नया कोई दिख रहा ऐसा लगता है उसके साथ जाके उससे बात करो, फिर कांटेक्ट, फिर तुम्हारा मोबाइल नंबर, फिर दोस्ती बनाने में इंटरेस्ट है, मेंटेन करने में नहीं है। और बनाना भी एक टेम्पटेशन है। फ्रेंड रिक्वेस्ट, डी फ्रेंड कर दो दुनिया के सभी लोगों को और बाप ही को अपना फ्रेंड बना लो। उसके बाद में अगला टेम्पटेशन है गॉसिप्स, गॉसिप्स अर्थात झरमोई झकमोई, इसने क्या किया उसने क्या किया, ये भी एक बहुत जबरदस्त टेम्पटेशन है ब्राह्मण जीवन का, रस है इसमें। दो तीन दिन पहले पुरली में था ना, वाहियात बातें, बातों के पकौड़े खाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मजेदार बातें, अव्यक्त महावाक्य है बापा के, जितनी जितना समाचार मजेदार होगा उतना वो व्यर्थ होगा, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, शायद 31 दिसंबर 1995 की अव्यक्त वाणी है, जितना समाचार मजेदार उतना वो व्यर्थ। व्यर्थ की चर्चा चालू है, जिसका कोई तुक नहीं है, जिसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, बैठे हैं और डिस्कशन चालू है, यहाँ क्या होगा, महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा, फिर इसका क्या होगा, फिर उसका क्या होगा, डिस्कशन ही डिस्कशन चालू है, जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। माउंट अबू के रोड का क्या होगा, गॉसिप्स, जहां पर गॉसिप से उसे दूर भाग जाना है, देखना भी नहीं है, बाबा ने तो मुरलियों में कहा है दूर भाग जाओ ऐसी आत्माओं से, अवगुण वाली आत्माओं से, दो तीन दिन पहले मुरली में था, दूर चले जाना है, देखना भी नहीं है उधर, तुम्हें खुद गुण धारण करने और दूसरों में गुण फूकने हैं। मुरली में था ना अभी दो तीन दिन पहले। अगला टेम्पटेशन है शॉपिंग, कहां पर भी जाऊं तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, यहाँ क्या चीज नहीं अच्छी होती है, शॉपिंग, कहीं पर भी नई जगह गए कुछ ना कुछ तो लेके आना ही है, कुछ ना कुछ खरीदना ही है वहां से। और आज तो उससे भी ज्यादा है डिजिटल शॉपिंग, ऑनलाइन, खाली क्लिक करना है बस, जो इसके पहले मंगाया था अभी तक खोल के भी नहीं देखा उसको, तब दूसरा मंगाना चालू है। चीजें वस्तुएं, तो शॉपिंग भी क्या है, एक प्रकार का टेम्पटेशन है, टेम्पटेशन होता है। लोग जाते हैं ना दुकानों में, किस लिए जाते हैं? देखते क्या है, देखने के लिए, अच्छा मिल गया तो ले लेंगे, कितनी फुर्सत है। हाँ, आधा टाइम उधर ही घूमते रहते हैं। तो ये भी एक टेम्पटेशन है। अगला टेम्पटेशन है वस्तु, वस्तुओं का टेम्पटेशन। किसी के घर में कुछ दिखा तो हमारे घर में भी ऐसी चाहिए। मधुबन का वो पर्दा हमारे घर में भी ऐसे ही चाहिए, ये घड़ी हमको भी चाहिए। किसी की पर्स कहाँ से ली, एक्स्ट्रा है क्या, मफलर, तुम्हारा शॉल बहुत ही बढ़िया है, कहाँ से लिया, ये एक्स्ट्रा है क्या, ये टोपी बड़ी अच्छी है, कहाँ मिलती है। आंखें डूबती है चीजों में, दूसरे के पास कोई चीज देखी कि तुरंत डूबती है, ऐसी चीज हमको चाहिए बस। टेम्पटेशन होता है, इसलिए तो मुरली में कहा टेम्पटेशन बहुत है संसार में। तो अपने आप को इन टेम्पटेशन से बचाना है। और लास्ट 12वां फैशन, फैशन मधुबन में कम पर बाहर बीकेज में ये भी एक बहुत बड़ा टेम्पटेशन है। अलग अलग प्रकार है उसमें, बाल को काले करने में ही लगे हुए हैं, कलर क्लोथ्स, डिजाइन, टैटू, वो स्प्रे, ये तो रोज का ही अनुभव है। बाबा की कुटिया में कोई ना कोई एक आ ही जाता है अमृत वेला, कि जिसकी एंट्री करते ही बेचारे सूक्ष्म वतन और परम धाम से आत्माएं नीचे गिरती होगी, इतना स्ट्रांग सेंट लगा के आ जाते सुबह सुबह अमृत वेला 3 बजे, पूरा नासा पटो में नाक में घुस जाता है वो, इतना स्ट्रांग लगा के आ जाते हैं कितने सारे। तो ये सब ये भी एक टेम्पटेशन है। तो टेम्पटेशंस तो बहुत है, उसमें से 12 हमने गिनाए, इससे भी कई सारे ज्यादा होंगे है। तो बाबा ने सुबह की वाणी में कहा टेम्पटेशन बहुत है, तुम्हें फूक फूक के खबरदार रहना है, माया से युद्ध है, माया जबरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चे को भी मुंह फेर देती है, हप कर लेती है और फिर चिल्लाते हैं, रोते हैं, बाबा क्षमा करो, गिर गए, माया का बन गए, अब क्षमा काहे की, क्षमा नहीं मिलेगी। अब ड्रामा में क्षमा वास्तव में होती नहीं है, कभी जो किया है वो उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। ड्रामा में क्षमा शब्द ही नहीं है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। हाँ वो दूसरा है, बच्चे अगर तुमसे भूल हो गई तो बाप को सच सच सुना दो, हल्के हो जाओगे, हल्के हो गए ये थोड़ी ना बोला आदम, वो ऐसे बोलने के लिए ऐसे हाथ घुमा दिया ऊपर से, आधा माफ, आधा नाम ना, आधा माफ होता है ना कोई कुछ माफ होता है। अव्यक्त बाबा के महावाक्य मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में इस ड्रामा में माफी शब्द है ही नहीं। जिसने जो किया होगा अगर वो कहे माफ हो जाए तो कर्म के सिद्धांत का क्या होगा, फिर ऐसे हो जाएगा माफी, माफी होती ही नहीं है कभी। जो जैसा करी तो तस फल चाखा, जिसने जो किया है उसको वो भुगतना ही पड़ेगा, नहीं छूट सकता, ये कर्म का सिद्धांत है। कर्म से कभी नहीं छूट सकते क्योंकि भगवान कर्म फिलॉसफी में इंटरफियर नहीं करता है, कभी नहीं करता है। मैं इसकी खांसी ठीक करने थोड़ी ना आया, इसकी खांसी मैं क्या करूं, तुम्हारे धंधे में नुकसान हो गया, मैं कोई धंधे का नुकसान ठीक करने आया हूं। डोंट ब्रिंग सच नॉनसेंस, आई हैव कम, एक ही पर्पस है, पतित को पावन बनाना। मेरे सिर में दर्द है, तुम्हारे सिर दर्द थोड़ी ठीक करने आया हूं। मेरे घुटनों में दर्द है तो भोगो, मेरा पति मारता है, तुमने भी मारा होगा उसको, मैं क्या करूं, मैं ये सब करने थोड़ी ना आया हूं। एक मुरली में तो यहां तक था जैसे युद्ध के मैदान में इतने सारे लोग मरते, बाबा देखो इस त्रासदी में इतने लोग मर गए, जैसे युद्ध के मैदान में इतने मरते यहां पर भी मरेंगे, उसमें क्या है, मरो, ये सबसे डिटैच है बाबा, उसका ये सब काम ही नहीं है। हाँ वो उसका प्यार का स्वरूप है, वो दूसरा है, वो तो इसके लिए कि भाई व्यक्ति इतना भारी है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, जब सच सच सुना देगा फिर प्रतिज्ञा करेगा कि अब मैं नहीं करूंगा ये बात, तो फ्यूचर आगे के जो पाप है उससे बच जाएगा ना, इसलिए। बाकी माफी तो यहां होती नहीं है कभी भी, जो किया है उसे भुगतना पड़ेगा। वो अंगुली माल था, सबके उंगलियां काटता था, अंगूठे, बुद्ध की शरण में आया, बुद्ध को कहा कि मुझे माफ कर दो, बुद्ध ने कहा मैं तुझे कैसे माफ करूं, तुम्हारा तू मेरा अपराधी नहीं है, तू उनका अपराधी है, जाओ उन सब से माफी मांगो। वो कहता है मैं अगर जाऊं तो वो मुझे मार देंगे, वो कहता चलेगा, वो जाता है, सब लोग उसको पत्थर मारते, इतना घायल कर देते, आखिर बुद्ध की गोद में वो शरीर छोड़ता है। पर बुद्ध कहता है अब ये जो मर रहा है ना, ये महान आत्मा मर रही है, जो आत्मा जो शरीर जा रही है ये कोई वो डाकू नहीं है, क्योंकि माफी तलाफी कर ली है इसने। इस्लाम में कहते कुफारा, कुफारा अर्थात पश्चाताप कर लेना, उससे छूटता तो कोई भी नहीं है पर कम तो जरूर होगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो ऐसे ये 10 प्रकार के 12 प्रकार के टेम्पटेशन से फिर से रिवाइज करते हैं। पहला बताया शरीर, इस शरीर से ऊपर रहना है, शरीर के सुखों में हमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी ना हो, आज ऐसा मौसम है कल वैसा मौसम होगा ठीक है, उसकी कंप्लेन करते नहीं बैठना, अभी ठंड ज्यादा है, अभी वो गर्मी ज्यादा है, अभी बारिश की हुई, प्रकृति अपना काम कर रही है, हम अपना पुरुषार्थ करते रहे, उसको जो करना है करे। पहला। दूसरा भोजन, लक्ष्य रखना है कि भोजन एक रस हो, लक्ष्य रखना है कि भोजन स्वाद के लिए ना किया जाए, जीवन यापन के लिए किया जाए। अपने आप से प्रश्न पूछना है, ये मैं खा रहा हूं भोजन करने के लिए जी रहा हूं या जीने के लिए भोजन कर रहा हूं, छोटा सा प्रश्न है महत्वपूर्ण। तीसरा नाम मान शान, सभी इस दुनिया ही तो इसके पीछे पड़ी हुई है, हम भी उसके पीछे पड़े। अगला भटकना, भटकना या साइट सीइंग कहो उसको, ये देखो वो देखो, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसको मिलूं उसको मिलूं, शांति से क्यों नहीं बैठ सकते एक जगह। अगला बोलना, बोलने का इतना आकर्षण है, अब बोलना भी है तो केवल ज्ञान युक्त, बस जैसे ही काम पूरा हुआ, सेवा पूरी हुई, ड्यूटी पूरी हुई, डू नॉट स्पीक अनलेस स्पोकन टू, जब तक कोई दूसरा ना पूछे बोले तब तक खुद नहीं बोलना है। हाँ सेवा करते समय जितना जरूरी है उतना सबको बोलना है, पर सेवा पूरी हो गई चुप अंदर की गुफा में जाके बैठ जाना। अगला डिजिटल टेम्पटेशंस बहुत है, अपने आप को देखना है कि मेरा पैर डिजिटल काई में फिसलता तो नहीं है, काई होती है ना, फिसलता है उसमें पैर काई में, डिजिटल काई, डिजिटल नगरी की अनचाही गलियां, भटकता तो नहीं। अगला नींद, स्लीप टेम्पटेशन, निद्रा जीत तुम्हारा गायन है, नींद को जीतने वाले तुम हो, अपनी नींद को भी अपने वश में कर देना है, ये बहुत ऊंची अवस्था है योगी की, पहले शरीर जीतेंगे, भोजन जीतेंगे, और फिर बोलना जीतेंगे, और फिर लास्ट में रह जाएगी नींद, इसको सबसे लास्ट में रखेंगे, क्योंकि इसका कंट्रोल, नीचे का सारा कंट्रोल आने के बाद ही आता है। अगला रिलेशंस, नए फ्रेंड्स बनाने का टेम्पटेशन, हाँ चलते चलते राह में कोई मिल गया बहुत अच्छी बात है, दोस्ती हो गई ठीक है, जबरदस्ती किसी को दोस्त बनाने के पीछे पड़ जाना, फेवर्स, इस ब्राह्मण जीवन में एक ही बात ध्यान रखना है, किसी का भी फेवर नहीं लेना है, डू नॉट टेक एनीबडीज फेवर, कोई कुछ दे दे ठीक है, मांगेंगे नहीं, नहीं चाहिए किसी की, बी सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर। उसके बाद में अगला गॉसिप्स, जरमोई जगमोई, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। अभी मुरली चली शांति वन में, दो चीजों पर अटेंशन, संकल्प और समय। तुम्हारा समय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट संडे की मुरली, पार्टियों से मुलाकात। ये संगम युग का समय बहुत महान है, महत्वपूर्ण है और ये इनकम का है। तीन बातें थी। अगला शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग या स्थूल शॉपिंग, शॉपिंग ही करते रहते बस। एक भाई बता रहा था, अभी अभी मेरी पत्नी ने एक साड़ी मंगाई, अब पहले इसके पहले जो मंगाई थी अभी तक खोली भी नहीं है, तो दूसरी मंगाई है आज। बीके भाई मंगाते रहते चीजें। अगला वस्तु, चीजें टेम्प्ट करती है, चीजों में बुद्धि डूब जाती है। छोटी सी छोटी पेन भी दिखा तो लगता है ऐसा पेन मुझे चाहिए, ये पेन बहुत अच्छा चलता है, हमारा तो बहुत रुक रुक के चलता है, कहां से लिया। अगला फैशन, बारहवा फैशन, हमारा ड्रेस बड़ा सादा स्वच्छ हो, ऐसा ना हो कि हमको देखकर किसी के मन में विकारी भाव उत्पन्न हो। एक साकार मुरली है जिसमें बाबा ने पारसी स्त्रियों का उदाहरण दिया है। वो पारसी स्त्रियां ताकि कोई पीछे लट्टू ना हो जाए, चेहरे पर काली जाली लगा के फिरती है। साकार मुरली है। तो ड्रेस सिंपल सा हो, उसमें ये सब फैशन और ये सारी चीजें, इसमें हमको जरा भी इंटरेस्ट ना हो। तो ऐसी ये सारी टेम्पटेशंस की बातें हैं। गीत में सुना था, ये क्या है, माया मोह को त्याग रे प्राणी, जीवन है बस बहता पानी। जल पे काहे चित्र बनाए, ये छाया तो है आनी जानी, रूप की धूप तो ढल जाएगी। रूप एक धूप है जो क्या हो जाएगी, ढल जाएगी। अब जो इतना रूपवती रूपवान दिखाई दे रहा है, वही जब बीमार पड़ता है तो उसकी क्या हालत हो जाती है, वही जब बूढ़ा हो जाएगा तो क्या हालत हो जाती है, या वो जब मर जाता है तो क्या हालत होती है। कोई सामने भी अगर कोई मर गया तो रात भर कोई घर पे रखते हैं क्या, घर पे भी रखना गवारा नहीं करते। जल पे चाहे चित्र बनाए, काहे चित्र बनाए, ये छाया तो है आनी जानी, रूप की धूप तो ढल जाएगी। मोह, मोम ये सारी पिघल जाएगी, ये शरीर मोम है। ये कितना अच्छा उदाहरण है, ये सारे क्या है, मोम के पुतले पिघल रहे हैं। मोम के पुतले क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। अपने घर के ही सारे लोगों को देखो, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, सब पिघल रहे हैं। आत्मा बची है, बस प्यार इस आत्मा से करना है, ना कि इस शरीर से जो कि पिघल जाएगा। अहंकार का आचल छोड़ो, झूठे बंधन सारे तोड़ो, कहते आए सदा ये ज्ञानी, मोह माया को त्याग रे प्राणी। अच्छा, ओम शांति।
सदा ये क्या।